ये तो एक सोशल फेस्टिवल के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं, पर जो थैंक्स गिविंग का जो सेंस है वो बड़ा स्पिरिचुअल है और हर व्यक्ति के अंदर ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जिसमें जितना ज्यादा होता है यकीन मानिए वो उतना लाइफ में खुश रहता है, और ठीक वाइस वर्सा जिसमें जिसके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जितना कम होता है वो अंदर से उतना दुखी मिलेगा। ऊपर से दिखे ना दिखे अंदर से दुखी मिलेगा, क्योंकि वे एक दूसरे से रिलेटेड है। थैंकफुल होना, खुश होना, ये इंटर रिलेटेड है। थैंकलेस होना और दुखी रहना ये भी इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए बी ग्रेटफुल टू दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर लाइफ, वो कोई भी हो, परमात्मा से लेकर नेचर का कोई भी एलिमेंट हो, हवा पानी तक, आपके घर से, घर में फैमिली रिलेटिव से लेकर कोई भी अनजान व्यक्ति जो इनविजिबल है पर जिसके कारण आपके लाइफ में खुशहाली आती है पर आपको पता नहीं। तो ये जब सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, बहुत लोगों में नेचुरली है, बहुत लोगों को कल्टीवेट करना पड़ता है, पर इसकी इंपॉर्टेंस जब आप समझते हैं कि थैंक्स गिविंग कितना जरूरी है, मुंह में नहीं, अब मुंह में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो बड़ा मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही आर्टिफिशियली बोलते हैं, वैसे भी इरिटेटिंग होता है। मतलब आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो अलग बात है, बोले तो दिल से बोले, नहीं तो ना बोले, वो आप सबको फील होता है। बहुत सारे लोग वैसे ही सुपरफिशियली बोलते हैं और कितना वो इरिटेटिंग है। ग्रेटफुल होने का जो जिन लोगों में ये नेचर बना है या थोड़ा बहुत है, उसकी जो फायदाएं होती हैं, आज हम उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो एक दुनिया में साइकोलॉजिस्टों ने बहुत इस पर रिसर्च है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि जो ग्रेटफुल होता है उसको कितनी क्या क्या फायदाएं मिलती हैं। इवन लोग बीमारियों के भी इलाज में इसको यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं माइंड से भी रिलेटेड होता है, और माइंड को शांत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुतों में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि व्यक्ति के अंदर वो ग्रैटिट्यूड है। जैसे ऑनेस्टी होती है, जैसे कंटेंटमेंट होता है, संतोष रहना, इसी तरह ये जो धन्यवाद की प्रवृत्ति है, ग्रेटफुल होने की प्रवृत्ति, ये आपकी बहुत सारे स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है, डिक्रीज करता है, और आपको बेटर लाइफ जीने के लिए मजबूर बाध्य करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप तभी थैंकफुल बने जब आपके पास कुछ बहुत कुछ हो, और बहुत कुछ होने का डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी को भी पूछो वो अंदर से उसको लगता है कि और बहुत इकट्ठा करने की जरूरत है, ये कम है। जो रोज मैं पूरे प्लैनेट की बात करता हूं, जो पूरे 12 घंटे काम करने के बाद भी $5 कमाता है या $1 कमाता है, उसकी भी नीड सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं होता है। और जो एक घंटे में भी बिलियंस कमा लेता है वो भी, उसको भी लगता है मुझे और चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ही ग्रेटफुल होने की कोशिश करें, फिर लाइफ में ऐसा कभी मौका आएगा भी नहीं। व्यक्ति ग्रेटफुल इसीलिए होना चाहिए जो उसके पास है, जितना भी है, उतने के लिए भी धन्यवाद करना जरूरी है। बच्चों के कैंप में टीचर ने उनको एक क्वेश्चन दिया कि वो सेवन वंडर्स का नाम लिखो, तो बच्चों ने लिखा जो भी सेवन वंडर्स होते हैं। पर एक बच्ची जो अलग सोचती थी, रटी रटाई किताबी वाले सोच नहीं था, तो उसकी जो पेपर देखा उसमें लिखा था सेवन वंडर्स इन माय लाइफ, आई कैन सी, आई कैन हियर, आई कैन टच, आई कैन फील, आई कैन लव, आई कैन क्राई, आई कैन टेस्ट, आई कैन लव। आपको लगेगा इसमें वंडरफुल क्या है? किसी गुंगा को पूछो बोलने का क्या कीमत है। बिना हाथ वाले आदमी से पूछो कि हाथों की क्या कीमत होती है, बताएगा? किसी ब्लाइंड को पूछो आंखों की क्या कीमत है। हमारी प्रॉब्लम है जो हमारे पास है हम उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसलिए जितना भी है उतने के लिए भी थैंक यू बोलने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है। लोग तो इसीलिए भी दुखी होते हैं कि प्लेट में क्या खाना है, कम है, बहुत है, स्वाद है, नहीं है। पर करोड़ों लोग हैं जिनके पास प्लेट भी नहीं है खाने के लिए, तो आप उनसे बेटर हैं। आप जब भी आपको लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे पास कुछ कम है, कोई भी कम हो, जब पैसे भी बहुत हो जाते हैं लोगों को लगता है मेरे पास प्यार कम है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, पति बढ़िया से प्यार नहीं करता, पत्नी नहीं करती, बच्चे नहीं सुनते, वो प्यार की कमी की भी रोना रोते हैं। पर तब भी आप देखेंगे करोड़ों लोग दुनिया में हैं जिनका कोई है ही नहीं जिनको प्यार करने वाले, फुटपाथ में घूमते हैं, स्ट्रीट में पड़े हुए हैं। छोड़िए आपके घर में जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग से भी बदतर लाइफ जीतते हैं, वो भी जीतते हैं, आप उनसे बेटर हैं। तो बी थैंकफुल। इसीलिए जो 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 थैंकफुलनेस है, ये एक बहुत सुंदर, एक ब्यूटीफुल इमोशन है जो दूसरों को कम इफेक्ट करता है, आपके आपको ज्यादा इफेक्ट करता है जब आप थैंकफुल होते हैं। आप दूसरे को थैंक्स बोलते हो, सामने वाले को कभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है ये अलग चीज है, पर अगर आप जेन्युइनली थैंकफुल हो, यकीन मानिए आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप इसको फील करते हो। किसके लिए थैंकफुल होना है? कोई भी छोटी सी छोटी चीजें जिसके जो आपके लाइफ में खुशी दे गया या दे रहा है, जो आपकी छोटी सी छोटी नीड को भी पूरा कर लेता है, छोटी सी भी नीड हो सकता है, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग में, और जिसके अंदर ये होता है वो डेफिनेटली एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी होता है। यकीन मानिए कोई भी ग्रेटफुल पर्सन जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड का सेंस बहुत ज्यादा हो, वो बुरा आदमी हो भी नहीं सकता। मेरा तो मानना है बच्चों को आप बाकी जो भी सिखाएं ना सिखाएं, बचपन से जरूर ये आदत डलवाइए कि थैंक्स बोलने का नहीं, थैंक्स को बोलने का तो ठीक है, एक सिविलिटी है, वो एक डिसेंसी है, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। वो फील करे हर वो छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होने का। अगर ये हमने बच्चों को बचपन में ये सीख दे दी और उसके मन में ये डाल दिया कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी है वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूटर वहां है एंड आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट, आप बच्चे के 50% से ज्यादा जो कैरेक्टर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। ये छोटी सी चीज, बस वो उसके अंदर वो जेन्युइनली फीलिंग आनी चाहिए कि आई एम थैंकफुल। इसी को हमारे यहां श्रद्धा कहते हैं। हम कहते हैं ना, मां बाप के प्रति श्रद्धा बच्चों में नहीं है, देश के प्रति श्रद्धा नहीं है, या है ये भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रत का मतलब होता है सच, धा मतलब टू होल्ड, मीन्स एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। मां बाप किसके प्रति श्रद्धा रखने का भाव क्या है, ये एक्सेप्ट करना कि मां बाप ने मेरे जीवन में क्या किया है। बी थैंकफुल, बोलने की जरूरत नहीं है। हर खाना खाने के बाद पापा थैंक यू आपने खाना दिया, मम्मी थैंक यू आपने ये किया, ये यूजलेस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। फील हो जाए बच्चे को, आप ऐसा ट्रेंड कर दिया कि उसके अंदर वो फीलिंग रहे, फिर वो जो कुछ भी करेगा देवियों सज्जनों वो श्रद्धा है, श्राद्ध है, वो भक्ति है। क्यों ज्यादातर लोग ईश्वर के मामले में हिपोक्रेट हैं? ज्यादातर लोग, ज्यादातर रिलीजियस लोग हिपोक्रेट हैं। क्यों? ठीक है, पढ़ लिया सुन लिया, ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको लगता है कुछ पाप पुण्य जो भी है विचार चलता है, क्योंकि अंदर से उनको ये फील नहीं हुआ, ना किसी ने कराया कि ईश्वर का तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। द मोमेंट ही रियलाइजेस व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गॉड इन माय लाइफ, फिर ना किताब पढ़ने की जरूरत है, ना उपन शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना प्रवचन सुनने की जरूरत है। वो व्यक्ति उसी मोमेंट में श्रद्धा करने लगेगा ईश्वर में। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि पूजा करो, मंदिर जाओ, हवन करो, संध्या करो, भक्ति करो, नथिंग। वो करेगा ही, जो भी करेगा वो भक्ति होगा, श्रद्धा होगा। हो सकता है द वे यू वांट टू डू इट वो ना करे, पर उसका हर वो काम ईश्वर की समर्पित होगा, अगर अंदर उसके अंदर वो भाव पैदा हो गया हो कि ईश्वर का मेरे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। ये ग्रैटिट्यूड का ठीक उल्टा होता है इनग्रैटिट्यूड, थैंकलेस होना। ये एक ऐसा कीड़ा है जो बेसिकली ईगो से पैदा होता है। ईगो क्या है? ईगो के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ईगो एक ऐसा चीज है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से आपके अंदर ईगो का मच्छर डंक मारता है। आपको लगेगा ये सब कुछ, मैं तो बड़ा हम्बल हूं, नॉर्मल हूं, वो हम्बलनेस के अंदर भी कभी कभी ईगो, ईगो के हजारों रूप होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा झुके हुए लोग भी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झुकता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा विनम्र हूं, वो उसका ईगो का कारण है। मेरे से बड़ा कोई हम्बल नहीं हो सकता, बड़ी शटल है ईगो। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा वो जो ईगो है हमें ये अलाउ नहीं करता है थैंकफुल होने का। क्या किया उसने? बच्चे पूछ लेते हैं आजकल, क्या किया मां बाप ने जी, आपको पैदा किया पाला तो क्या नया कर दिया, सबके सब करते हैं। क्यों? फील नहीं हुआ है कि क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया उसने मेरे लिए। ये जो क्या किया देखने जाए तो तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये ना बॉडी तुम्हारा ना माइंड तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें क्या मिला है, किसने पूछ के तुम्हें ये दिमाग दिया, तुम्हें पूछा दिमाग इतना चाहिए उतना चाहिए, किसने पूछा तुम्हें सुंदर बनाओ काला बनाओ, तुमने कहा ये बनाओ, नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारे मर्जी है नहीं है तुम्हें डाल दिया गया, किसी ने दिया ये ढूंढने का काम है हमारा। जैसे ही ढूंढने लगोगे पता चलेगा, तुम थैंकफुल होने लगोगे, ईश्वर ने मुझे कितना सुंदर मुंह दिया है, आंखें दी देखने की दी, हाथ दी पैर दी, मम्मी पापा ने ये किया। तो मोस्टली आप मेरे पास कितना भी हो फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, मेरे पास जो है इसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण है। या आप जो अवार्ड लेने जाते हैं ना, ये खास करके जो फिल्म अवार्ड लेने जाते हैं ऑस्कर की, या ये फिल्म वाले भी सब अवार्ड लेते हैं, वो अवार्ड लेते, बाकी जगह होता होगा हमें पता नहीं, हम तो टीवी में इन्हीं को देख करके देखते हैं, वो अवार्ड लेते ही आ जाएंगे, किसको थैंक, पहले तो मैं अपनी वाइफ को थैंक यू करता हूं, फिल्म में अवार्ड लेने के लिए पत्नी ने क्या किया भाई, पत्नी घर जाके डांट पड़ेगी, खाना कौन बनाए, बच्चों को थैंक यू कहता हूं, अवार्ड तो आपको बच्चे पालने के लिए नहीं दिया गया वो भूल गया किसके कारण तुम फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, किस कारण से बढ़े, बस दुनिया भर में पत्नी बच्चे मां बाप क्या कुछ दिखता ही नहीं है, आपके लाइफ में कितने चीजों का कंट्रीब्यूशन है ये बहुत जरूरी है। एक लेडी ने एक पेपर में अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मैं रोज ऑफिस से जब घर जाती थी, ऑफिस की टेंशन के बाद फिर पीक टाइम में गाड़ी चलाओ, रास्ते भर रेड लाइट्स वेट करो, 5-7 मिनट के बाद नेगेटिविटी आ जाती थी माइंड में, ऊपर से ऑफिस के टेंशन, फिर रास्ते भर रेड लाइट, घर पहुंचते पूरा सर से पैर तक नेगेटिविटी से भरी हुई होती थी, चिड़चिड़ा होती थी, बच्चे मम्मी कुछ बोलना चाहते थे चिढ़ जाती थी, नाराज होती थी, पति पर गुस्सा करती थी, घर में सब रात तक मेरी दिमाग में वही नेगेटिविटी चिड़चिड़ापन रहता था। कुछ दिनों तक मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ मैं कर रही हूं, धीरे धीरे फीलिंग होने लगा, बच्चों ने एहसास कराया, किसी ने एहसास कराया, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, सुबह तो मैं ठीक जाती हूं, फ्रेश होकर जाती हूं, सब अच्छा रहता है, बच्चों के साथ करता हूं सबके, ऑफिस भी बड़े पॉजिटिविटी के साथ जाती हूं, क्यों होता है, पता चला उसने खुद को एनालाइज किया कि ऑफिस के स्ट्रेस के बाद जब रास्ते में रोड पर आते हैं, फिर जो ट्रैफिक लाइट में खड़े रहते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी, ये दिमाग में विचार आता है, वो विचार क्या, अच्छे विचार नहीं आते, क्या क्या मेरे साथ बुरा हुआ और क्या क्या ऑफिस में किसी ने मुझे टोका, किसी ने डांटा, बॉस ने क्या बोला, इवन घर में भी आते समय कुछ हुआ वो उल्ट सब नेगेटिव चीजें याद आती है, किसी से बात की बोले ऐसा करो ट्राई करो, अब ये जो आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटे तक ड्राइव करते हो उस समय ये सोचो कि दिन भर अच्छा अच्छा क्या हुआ, 1-2 दिन सोचो, तो उसने ट्राई किया सोचने की, आज ऑफिस में क्या अच्छा हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके दिन भर में कितना भी बुरा दिन गया हो कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं होगा तो किसी ने कोई ना कोई स्ट्रेंजर हो फ्रेंड हो मिलके बड़े प्यार से मुस्कुराकर तो बोली होगी हेलो कैसी हो, जो आपको दिल को छू गया होगा अच्छा लगा होगा, किसी ने जेन्युइनली आपको हेलो कैसी हो पूछा हो याद करो। तो उसने लिखा 2-3 महीने के बाद जब मैंने ये रिमेडी अप्लाई की तब से आज तक, मैंने उन्होंने जब लिखा पत्र में लिखा मेरे बच्चे मेरे से बड़े खुश हैं जब मैं ऑफिस से आती हूं, अब उनको लगता है मां वैसी नहीं है बड़ी अच्छी है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल जोश के साथ घर में आती हूं फ्रेश में होती हूं। दिव्यों सज्जनों, सिर्फ आपकी माइंड चेंज हो जाता है आपकी पूरा का पूरा दुनिया बदल जाती है, आपके आसपास के लोगों में लाइफ में खुशी आ जाती है, क्यों आपके अंदर खुशी आती है, प्रॉब्लम कहां थी वही थैंकलेस और थैंकफुल का, जो अच्छा हुआ वो तो हमने इग्नोर कर दिया, जो बुरा हुआ उसी को हमने मांझ के साफ करके बढ़िया बना के तो रोज चमका रहे, अच्छा बुरा दोनों होता रहता है, इसीलिए ये बड़ा जरूरी है। It's easy to get lost in the hustles of our everyday lives and never pauses to look at the big picture and realize there is a lot to be grateful for. Even every day, ऐसे 50 चीजें होती हैं जिनके लिए you need to be thankful. जिसने आपके दिन बना दिए, किसी ने मुस्कुराकर बात की, attachment दिखाया, affection दिखाया, आपका काम बन गया, हजारों चीजें होते हैं। पर हमारी जो आमतौर पर जो एक आदत बनी हुई है, सबकी नहीं तो बहुतों की नहीं तो बहुत लोगों की, कि हमारा फोकस रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है या क्या नहीं हुआ, फिर हम उसी से रोना शुरू करते हैं ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह है? ये पिक्चरों को ध्यान से देखते रहिएगा, प्रवचन मत सुनिए, पिक्चर से ही सारा ज्ञान हो जाएगा आपको। ये पिक्चर बड़े डिलीबरेटली डाला है, है? ये बच्चे की कहानी नहीं है, ये बच्चा जो देख रहे हैं ये हम सबकी प्रॉब्लम है। ऐसे ही बच्चे को आप कुछ भी दे दो, बच्चे ने बोला कि रेस्टोरेंट जाना है तो आप ले गए, रेस्टोरेंट में खाना खत्म होते ही बच्चा पूछता है इसके बाद कहां जाना है, घर जाना है, नहीं नहीं घर नहीं जाना, आइसक्रीम खाना था या किसी स्टोर में जाना था, नहीं आज नहीं कल, फिर होना शुरू हो गया। कुछ भी बोलो कभी तो देते नहीं हो, अभी तो रेस्टोरेंट में खाना खाया। शिकायत शुरू हो जाती है, छोटों की अपनी शिकायत है, टॉयज की, आइसक्रीम की, खाने की, बड़ों की बड़ी बड़ी शिकायतें, बड़ों को लगता है छोटे बच्चे तो ऐसे ही बिगड़े हुए हैं, बड़े अपने आप को साफ सुथरे मानते हैं, हम भी वैसे ही हैं, रोने वाले बच्चे सामने रोते हैं, हम अंदर से थैंकलेस होते हैं। लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं, हम शुरू हो जाते हैं ये मेरे साथ क्यों होता है, मेरी गाड़ी ही क्यों खराब हुई, इतने गाड़ी थे वो नहीं हुए, भाई जिसकी होगी वो भी तो वही बोलेगा, मैं ही क्यों बीमार हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ, भाई दूसरा क्यों होगा, दूसरा भी तो तुम्हारे जैसा है। हर व्यक्ति हमारे में से जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम सोचते हैं मेरे ही साथ क्यों, और कुछ अच्छा होता है तो वो मेरे ही साथ होना चाहिए था, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व टू बी लव्ड, व्हाट अबाउट यू नीड टू लव अदर्स, उसका कोई आंसर नहीं। आई डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, व्हाट अबाउट टू रेस्पेक्ट अदर्स, उसका कोई आंसर नहीं। ये बच्चे बहुत बोलते हैं, आई डोंट डिजर्व टू बी लाइक दिस दिस दिस, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मेरे साथ, तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं, मतलब हमारे सबकॉन्शियस में होता है, वैसे ऊपर लेवल पर नहीं होता है, सबकॉन्शियस में होता है कि शायद मैं इस संसार में एक एक्सक्लूसिव महिला या पुरुष हूं, शायद ईश्वर का मैं एक बड़ा यूनिक टाइप का बच्चा हूं जिसको सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता है, और सारे जो अच्छी चीजें होनी चाहिए मेरे साथ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई डिजर्व इट, एक्सपेक्टेड है, और हल्की सी भी बुरी बात होने लग जाए तिल मिलाने लगते हैं, क्योंकि इसके लिए तो मैं डिजर्व नहीं करता, और कौन डिजर्व करता है, कोई भी करे, सब कर सकते हैं, सब डिजर्व करते हैं मुझे छोड़ के, पर हम भूल जाते हैं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप दोनों को एक्सेप्ट करते हो नेचुरली, खराब होता है तो दुख लगता है, दुख होना अलग बात है, पर जब हम उसको दिल में लगाते हैं और अच्छी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, फिर आफ्टर एंड ऑफ द डे हम थैंकलेस बन जाते हैं, और जब आप थैंकलेस बनने की आदत बना देते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कब हम पत्थर बन चुके हैं, कब हम कठोर बन चुके हैं, कब हमारा दिल मर चुकी है, और कब हमारा जो साफ सुथरा मन है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। इसीलिए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बड़ी जरूरी है। शुरू करें कहां से, सबसे पहले थैंकफुल बने, डेफिनेटली सबसे पहले परमात्मा प्रभु से धन्यवाद रखें, प्रभु ने आपको जो कुछ भी आपके पास है वो प्रभु की कृपा से मिली, आपको क्या पता है कि आपने क्या किया नहीं किया, आपको क्यों मिला, ये दो हाथ दो पैर दो आंख इतने सुंदर शरीर, सुंदर शरीर में भी फिर आप कंप्लेन करते हो, नहीं सुंदर कहां हूं मैं तो जी, उससे थोड़ा छोटा हाइट में हूं, है ना, उससे थोड़ा मोटा हूं साइड में, सुंदर कहां हुआ दुनिया में, देखो तुम करोड़ों लोगों से सुंदर हो, बदसूरत से बदसूरत भी करोड़ों लोगों से सूरत है। कम से कम तुम्हारे पास हाथ तो है खाने के लिए, पैर है चलने के लिए, बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है। सबसे पहले ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। जो भी ईश्वर ने दिया है, कम से कम ये सुंदर शरीर दिया है, खाली शरीर ही नहीं, इस शरीर की बनावट देखिए, एक एक चीज शरीर की पार्ट को कभी सोचिए, ये आंखें दी नहीं होती तो क्या होता मेरे साथ, ये अंगुलियां नहीं होती तो क्या होती मेरे साथ, मेरा ये सोचने की जरूरत है। जब आप अपने सिर्फ शरीर को भी काउंट करेगा ना, तो आप लेटे लेटे आधे घंटे तो आप लेटे रहेंगे परमात्मा के पास, मुझे तुमने इतने कुछ दिया है। एक साधु महात्मा जा रहे थे तो रास्ते में रेल लाइट पर भीख मांगते, एक बच्चा भीख मांग रहा था, मेरी मां नहीं है, पापा बीमार है, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो दे दो। तो बाकी लोग जो भी चवन्नी अठन्नी दे देते, इस साधु ने उसको पास बुलाया, बोला ये क्यों बोलते हो भगवान के नाम पर दे दो, ना देखो मेरी मां नहीं है, और रिपीट किया, पापा बीमार है, वो है, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं दे दो आप कुछ, बोले ठीक है मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अच्छा क्या चाहिए, तेरा हाथ दे दो मुझे। कितने गंदे आदमी हो भाई, हाथ मांगते हो, हाथ काट के दे दो फिर मैं क्या करूंगा, तूने कहा तेरे पास कुछ है ही नहीं, भगवान ने तुझे कुछ दिया ही नहीं, चलो 10,000 कम पड़ रहा है, 1,00,000 दूंगा, एक आंख दे दो। कैसे बात कर रहे हो भाई, आंखें दे दूं मैं देखूंगा क्या, एक आंख है ना देख लेना, चलो 2,00,000 दूंगा, दोनों आंखें दे दो। वो बच्चा लगा बड़ा बदतमीज आदमी है, उसने बोला तू 2,00,000 देने के बावजूद भी आंखें देने को तैयार नहीं हो, फिर बोलते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, शरीर है, मुंह है, जीभ है, शरीर के अंदर का हार्ट है, लिवर है, हजारों चीजें हैं, फंक्शन कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं, नहीं ये क्यों बोलते हो भगवान के नाम पर दे दो, भगवान ने सब दिया है जो देना चाहिए, बाकी कुछ तेरे पास कमी है, करोड़ों लोगों के पास कमी है। देवियों सज्जनों, हम कुछ ना होना दिखा दिखा करके सिंपैथी ले लेते हैं, और ईश्वर के पास भी रोज शिकायत करते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, पर भूल जाते हैं ईश्वर ने जितना दिया अगर उसको काउंट करोगे ना, कभी आप एक डायरी बनाएं, लिखें, कोई भी चाहे लिखने की, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, यकीन मानिए आपकी डायरी खत्म हो जाएंगे, आपके सेंटेंसेस खत्म नहीं होंगे, इतनी अच्छी चीजें हुआ आपके साथ, नहीं आप तो वैसे ही बड़े अच्छे, सब चीजें ईश्वर ने आपको दी है, ऐसे खराब माहौल में रहने बहुत दुखी से दुखी आदमी को भी बोले डायरी लिखो, शुरू में तो 1 घंटा 2 घंटा उसको समझ में नहीं आएगा मेरी लाइफ में अच्छा हुआ ही क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ है, पर जैसे ही पहला लाइन लिखेगा ये अच्छा है, लिखता जाएगा लिखता जाएगा, दुखी से दुखी आदमी का भी डायरी खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं जो उसको खुशी दे सकता है, पर हमें लगता है कि आई डिजर्व इट, जो नहीं है वो नहीं है। किसी फिलोसोफर का ये लाइन है, सम पीपुल कंप्लेन बिकॉज गॉड पुट थॉर्न्स ऑन रोजेस, अदर प्रेज हिम फॉर पुटिंग रोजेस अमंग थॉर्न्स। देखने की नजरिया है, कुछ लोगों को लगता है कितना ईश्वर बकवास करता है, काश गुलाबों में कांटे नहीं होते कितना मजा आता, ये कांटे चुभते हैं, उसी गुलाब को देखकर बहुत लोग कहते हैं धन्य है ईश्वर, ये कांटों में भी गुलाब खिला दिया, फर्क समझ में आता है, कांटों में भी गुलाब खिला दिया, कमाल है। दूसरों को समझ में आता है ये गुलाब में कांटा डाला, देखने की नजरिया है। जीवन में सुख और दुख को आप क्या चुनते हो, दुखी होना हो तो लाइफ में आने वाले सब, बहुत सारे लोग तो वो दिमाग में कंप्यूटर में फीड करके रखे हैं। जब झगड़ा होता है ना, खास करके आपस में पति पत्नी में, पूरी कुंडली खोलते हैं। हो जी 40 साल से देखो, शादी के बाद से ये किया ये किया, क्या सब बुराई, ये किया आज तक देखो सब बुराई किया, तो वो भी कुंडली खोलती है। होता क्या है, लड़ाई घनघोर होता है ना, भयानक फायदा फाइटिंग होता है। अच्छा कभी हमने ट्राई किया है कि चलो एक आदमी कुंडली खोली बुराई की, तुमने ये किया मेरी लाइफ खराब कर दी, शादी करके जिंदगी मेरा बर्बाद हुआ। अगला वाला कहे ठीक है, पर मैंने तो तुम्हारे से शादी करी, देखो ये अच्छा ही हुआ, पहले से ये अच्छा ही हुआ। डायरी खोलो, क्या पता कि अगले बार वो बुराई वाली डायरी बंद कर दे, आपको अच्छा ही खोले। पर हमें दूसरों में हमें लगता है कि अच्छा ही तो मैं डिजर्व करता हूं, तुमने क्या एक्स्ट्रा किया, अच्छा खाना खिलाया तो मैं डिजर्व करता था, खाना खराब बन गया ये तुम्हारा दोष है। तो ये देखने की तरीका है, और इसका खाली तरीके से छुट्टी नहीं मिल जाएगी, इसका इंपैक्ट फिर हमारे ऊपर पड़ता है ना, फिर हम दुखी होते हैं सुखी होते हैं, आफ्टर ऑल कॉन्सिक्वेंस तो हमें ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए प्रभु से कृतज्ञ बनिए, ग्रेटफुल बनिए, हर वो सिंगल ब्रेथ के लिए सांसें दे रखी है, ये शरीर ये प्राण ये मन बुद्धि परिवार मां बाप समाज सब दे रखा है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है लाइफ का। तो इसीलिए जब हमारी और एक प्रॉब्लम होती है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं, मेरे पास इतना है मैं खुश हूं, डेफिनेटली मैं खुश हूं, पर मेरी खुशी में प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं दूसरों को देखता हूं, दूसरों के पास मेरे से थोड़ा बेटर है। देखो मिसेस रेड्डी को कितना अच्छा सांबर बनाती है, मैं तो राजमा अच्छी बनाती हूं ना, नहीं मिसेस रेड्डी के सांबर तो ज्यादा अच्छी है ना, दूसरों के घर की चीजें ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, तो फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर लगता है कि मेरी कहीं कमी रह गई, फिर हम शिकायत करते हैं दूसरे से नहीं, ज्यादातर लोग तो दूसरों से शिकायत ही नहीं करते, खुद से अपने आप से ईश्वर से, क्यों मुझे ऐसा मां बाप दिया, मां बाप से भी शिकायत है, क्यों मुझे ऐसा पति या पत्नी दिया से भी शिकायत है, मुझे ऐसा बच्चा क्यों दिया, वो पड़ोसी वाला बच्चा क्यों नहीं दिया, वो इतना अच्छा है डॉक्टर कर रहा है और मेरे बच्चे को मैंने बोल बोल के थक गया, कहते सीए करूंगा, वो वाला बच्चा देता है, हर चीज में कॉम्प्लेन। पर होता क्या है, एट द एंड ऑफ डे सब कुछ होने पर भी हम थैंकलेस हैं, असंतुष्ट हैं, और बिल्कुल एक हार्ड ड्राई लाइफ जीते हैं, जो अंदर से तो ड्राई है ऊपर से भी दिखने लग जाता है। इसीलिए देवियों सज्जनों, खुशी उसमें नहीं होती है जो है, जो नहीं है उसको पाने में, खुशी उसमें ढूंढनी चाहिए जो मेरे पास है। खुशी मनाने के लिए हजारों चीजें हैं जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, और जब हम जो नहीं है उसको पाने में खुशी ढूंढते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में कभी खुशी नहीं आती है, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। वो एक कहावत है, कोई कंप्लेन करता है कि मेरे पास शूज नहीं है, किसी ने बोला शूज ना होने का कंप्लेन करते हो, पर इस बात की तो खुश हो कि तुम्हारे पास पैर है, लाखों लोगों के पास तो पैर भी नहीं है शूज पहनने का, कम से कम पैरों होने का तो खुशी मना लो, फिर जूता ना होने का रोना रोना, पर वो याद नहीं रहता है कि वो भी है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो दुख में भी थैंकफुल हो जाते, वो दुख में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं जिसमें वो अपने आप को गदगद फील करते हैं। जेन्युइनली एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट लास्ट स्टेज में है, टर्मिनल डिजीज में। डॉक्टर ने बोला एक महीने अब आपके टाइम है, आजकल होता है, है? डॉक्टर बड़े सोच समझ के बोला, डर के, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, शॉक्ड होता है। अगले दिन जब डॉक्टर आया, पेशेंट बड़ा खुश था, उल्टा अपने बेड से उठ के बाकी पेशेंट के साथ बैठ के हेलो हाय करता था, हैंडशेक करता था, जोक सुनाता था। कभी कभी देखा कि वो हॉस्पिटल के यार्ड में टहलने भी लग जाता था, बेड पर बैठ के गुनगुनाता था, कुछ प्रेयर करता था। उसमें काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पूछा, जनरली तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जो एक महीने की जिंदगी है वो 15 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आते हो तो लाइफ और कम हो जाता है ना, इसीलिए डॉक्टर लोग अवॉइड करते हैं कि बताने की। पर आप में अंदर हम इस उल्टा देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है या आप ड्रामा कर रहे हो या आप जस्ट क्या असलियत क्या? उसने बोला, नहीं, मैं तो उन कुछ अच्छी किस्मत वाले लोगों में हूं जिसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, जिससे कि मैं अपने चीजों को ठीक कर सकूं। कंप्लेन किस बात की, मरते तो सब हैं, मैं उन लोगों में हूं जिसको पता है कि मैं कब मरने वाला हूं, मेरे पास एक महीना है, मैं सब चीजें ठीक ठाक करके जाऊंगा। रोज आप ईश्वर की भक्ति करता हूं, जो भी अब ये क्या रखा है लाइफ में अब वो छोड़ दिया, खुशी में खुशी रहता हूं। वो डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस में लिखा, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। एटीट्यूड की बात है, ये है थैंकफुल की, ईश्वर से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसा भाग्य है कि मुझे मरने से पहले एक पता चला कि मैं एक महीने के बाद मरूंगा। मैं बहुत सारे लोगों तो सडन डेथ होता है। देवियों सज्जनों, ईश्वर के बाद हम उन इंसानों को भी थैंक ग्रेटफुल होना चाहिए। जब मैं इन मनुष्यों की बात करता हूं ना, फिर वो तो एक अनलिमिटेड नंबर है, किस किस के आप थैंकफुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बात पिता माता की नहीं है, पिता माता बच्चे पति पत्नी ये तो है ही, आप यू हैव टू बी थैंकफुल। हजारों लाखों लोग हैं जो इनविजिबल है, अननोन है आपके लाइफ में, जिनके कारण आप इतने सुखी लाइफ जीते हो। वो साइंटिस्ट, वो टेक्नीशियंस, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर, वो किसान, वो फार्मर्स, वो स्टोर कीपर्स, क्या इनमें से किसी एक नहीं होने पर आपके लाइफ में वो खुशहाली होती जो है? कब हम इनके प्रति थैंकफुल होते हैं? किसी इंडिविजुअल के लिए थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी साइंटिस्ट ने ये बल्ब निकाला तो घर में लाइट हो रही है, थैंकफुल नहीं, ओवरऑल थैंकफुल सेंस होना चाहिए। मेरे लाइफ में जो भी सुख है, खुशी है, उसमें 90% कंट्रीब्यूशन दूसरे लोगों का है। जिस क्षण आपके अंदर ये भाव आए ना कि मेरे पास जो भी है, जो खुशी है, धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, उसमें मेरा काम विजिबल इनविजिबल नोन अननोन लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपकी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा। आप जाकर उस फ्रिज बनाने वाले को थैंक यू नहीं बोलने वाले हो कि तुमने फ्रिज बनाया, मैं अपना खाना सेव करता हूं, पर लोगों के प्रति तुम्हारी नजरिया बदलेगा। किसी के कारण तुम्हारा फायदा हुआ तो तुम और किसी का फायदा करोगे, तुम किसी और नीडी आदमी का फायदा करोगे, फ्रिज बना के नहीं। तुम जो कर सकते हो, किसी को टाइम देके, किसी को पैसे देके, किसी को ज्ञान देके, कोई ना कोई रूप, किसी को अच्छी काउंसलिंग करके, किसी ना किसी रूप में, जो जिसके पास सामर्थ्य है, फिर देकर तुम ये नहीं सोचोगे कि मैंने किसी पर एहसान किया, तुम खुश होगे कि मुझे मौका मिला कि मैं किसी के में काम आ सका। तो उनके प्रति भी हमारे अंदर वो थैंकफुल भाव होना चाहिए। जब भी मन में देवियों सज्जनों भाव आए ना कि लाइफ बेकार है, कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, कोई नहीं है, देखो ना पति साथ दिया, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। कभी कभी होता है ना आदमी डिप्रेशन में जाता है, उसे कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब स्वार्थी हैं। तो समझ लेना वो इसीलिए नहीं है कि लोगों ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए कि आपका लाइफ थैंकलेस है। तभी आपके लाइफ में इतना डल है, जूसी जूसी नहीं है, खुशी नहीं है। अगर ऐसा आए भी, उसका सल्यूशन है कि उसके आप सोचो कि आपके लाइफ में अच्छा क्या क्या हुआ, किस किसी ने आपकी भलाई की, फिर देखेंगे आपकी वो मुरझाया हुआ फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में वो ऊपर से सड़ा हुआ पेड़ के जड़ से फिर प्लांट उगने लगेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रेटफुल बने। इसमें दो चीजें हैं, कभी कभी अच्छी चीजें बोलो या सुनो ना, उसका बड़ा आपको पता ही नहीं चलता, बड़ा डेंजरस साइड इफेक्ट भी होता है। अब ये जो हमने सुना इसका भी बड़ा साइड इफेक्ट निकलने वाला है, इसलिए क्लारीफाई करना है। क्या? यहां से निकलने के बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे, तुम कभी थैंकफुल हुए हो मेरे प्रति? मैंने ये किया तुम्हारे लिए है? देखो आचार्य जी ने बोला यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कहां हुए तुम? ये बड़ा अपोजिट साइड इफेक्ट है, इसीलिए बताना जरूरी है। क्या? ग्रेटफुल मुझे होना है दूसरों के प्रति। दूसरों से एक्सपेक्ट करना उतना ही बेवकूफी है, उतना ही खराब है। दूसरों से थैंक्स एक्सपेक्ट करना ये हायर लेवल की ईगो का निशानी है, और थैंकफुल होना नोबल हार्ट का निशानी है। बात समझ में आई? ये बहुत जरूरी है। सर्विस शुड नॉट बी एग्जिबिशनिस्टिक, दिखावा वाला नहीं होना चाहिए। करो भूल जाओ, दूसरों ने किया याद रखो, बार बार थैंकफुल बनो। पर तुमने किसी के लिए किया, तुम्हारे बाएं हाथ का किया हुआ काम तुम्हारे दाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि तुमने क्या अच्छा किया, तब जाकर नोबल इंसान बनते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा काम करना भूल जाना, और दूसरे ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया उसको बार बार याद रखना, थैंकफुल होना ना, ये जरूरी है। एट द एंड ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये मेरी नहीं है, मैंने कहीं से ये इंग्लिश की कविता, बड़ी सुंदर कविता है, एट द एंड ऑफ आपको आएगा। प्रार्थना है, प्रार्थना करता है वो गॉड द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। फर्स्ट ग्रेटफुल हम होते हैं, हमारे भगवान ने हमें ये जीवन दिया। कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, कुत्ता तो आजकल अच्छे भी होते हैं, है ना? अच्छे इंसान से भी ज्यादा सुख में अमेरिका में हो तो, और कुछ बना लेता, चिकन बना लेता तो क्या होता? फॉर द ब्रेथ दैट सस्टेन्स माई लाइफ, फॉर द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, फॉर द फूड ऑफ दिस अर्थ दैट नर्चर्स लाइफ, गॉड आई एम ग्रेटफुल फॉर बिलव्ड वंस हु शेयर लाइफ विथ मी, those in our world beside me and those in worlds beyond my knowing. अभी बताया ना, हजारों लोग हैं जो आपको पता ही नहीं पर आपकी भला हो कर रहे हैं। For the love of family and friends without whose there would be no life. ये मन में प्रार्थना रखें, विचार रखें, किस किस के लिए मैं थैंकफुल हूं। At the end be thankful. यही थैंक्सगिविंग का ये सुंदर संदेश है। जीवन में काफी परिवर्तन आएगा, देखकर देखिए। स्पिरिचुअलिटी अपने आप आएगी, खुशी अपने आप आएगी, बच्चों के कैरेक्टर में भी चेंज हो जाएगा अगर हम ये सिखा दिया तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। ओम शांति।